वसुधा बातों को इतना कॉन्फिडेंटली कह जाती थी कि किसी को भी उस पर यकीन हो जाता था। राधिका के रूम के आगे वसुधा ने हमेशा की तरह इशिका और राधिका को माँ बेटी बताया। इशिका हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है। उसने कारण पूछा तो वसुधा ने उसे एक फ़ोटो दिखा दी। उस फोटो में राधिका और इशिका साथ में थीं और उसे देखकर लग रहा था कि फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं थी। इशिका गौर से तस्वीर को देखने लगी। उस फोटो के अंदर वो और राधिका थीं। उन दोनों ने ही वाइट कलर की शिफॉन की महंगी ड्रेस पहनी हुई थी और वे बीच पर थीं। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और जिस तरह से पोज लिया हुआ था, ऐसे लग रहा था कि दोनों का रिश्ता काफ़ी ख़ास था। उस फोटो को देखने के बाद इशिका ने धीरे से कहा, ये फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही है और मैंने तो बहुत साल पहले सिंघानिया विला छोड़ दिया था। मेरे पास इस तरह की वाइट शिफॉन की ड्रेस भी नहीं है, फिर मैं इस तस्वीर में कैसे हो सकती हूँ? क्या सोच रही हो बहू, अब तो यकीन आ गया ना कि यही तुम्हारी माँ है, वसुधा ने मुस्कुरा कर कहा। दादी, प्लीज़ आप एक मिनट के लिए मुझे अपना मोबाइल देंगी? इशिका ने थोड़ा हिचकिचा कर पूछा। वसुधा ने बिना सोचे समझे इशिका को अपना मोबाइल दे दिया। इशिका ने उस फोटो को जूम करके देखा। वो हर एक एंगल से उस फोटो को देख रही थी ताकि उसकी सच्चाई का पता लगा सके। जहाँ तक उसे याद था, उसने कभी मिसेस सिंघानिया के साथ इस तरह फ़ोटो नहीं क्लिक करवाई थी। अचानक ही इशिका के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसने मोबाइल वापस वसुधा को दे दिया। वो मन ही मन बोली, तो मेरा शक सही निकला, ये फ़ोटो फ़ोटोशॉप की हुई है, किसी अनप्रोफेशनल का काम लग रहा है जिसने इंटरनेट से कोई भी माँ बेटी की तस्वीर उठाई और उस पर हमारे चेहरे चिपका दिए। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? इशिका ने गहरी सांस ली और वसुधा से पूछा, अच्छा बताइए दादी, मैंने आपको ये फ़ोटो कब भेजी थी? मुझे याद नहीं है बहू, वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि मैंने आपको कैसे भेजी थी? क्या मैंने आपको कोई फैक्स किया था, मेल की थी या किसी और सोशल मीडिया के जरिए से ये फ़ोटो भेजी थी? इशिका ने फिर से पूछा। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद वसुधा को कुछ याद आ जाए। वसुधा ने कुछ पल सोचने के बाद ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है बहू। उनकी अचानक इस तरह बातें याद आने और इशिका को बताने पर इशिका बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर बातें उसके पास्ट से जुड़ी होती थीं। फिर जब भी इशिका उनसे इस बारे में सवाल करती थी तो वे जवाब नहीं दे पाती थीं और ये इशिका को और निराश कर देता था। इशिका ने इस बात को अनदेखा करने का सोचा। तभी वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर फिर से सख्त शब्दों में कहा, बहू, तुम इस तरह अपनी मॉम को इग्नोर नहीं कर सकती हो, वही तुम्हारी माँ है। इशिका हमेशा से यही चाहती थी कि राधिका ही उसकी माँ हो। उसकी आंखें नम हो रही थीं। उसने अपना चेहरा नीचे किया और अपने आंसुओं को छुपाकर खुद को सख्त करके कहा, हाँ दादी, आप ठीक बोल रही हैं, चलिए अब कमरे में चलते हैं, आप थक गई होंगी। इशिका ने बहाना बनाया और फिर वसुधा का हाथ पकड़कर उसे उसके रूम में ले जाने लगी। अभिमन्यु भी उनके पीछे आ रहा था। वो उनकी सारी बातें काफ़ी शांति से सुन रहा था। वैसे भी उसका बिहेवियर अग्रेसिव नहीं था। वो अपनी पावर और पोजिशन का शो ऑफ करना कभी से पसंद नहीं करता था। इशिका वसुधा को लेकर कमरे में चली गई थी, लेकिन अभिमन्यु अभी भी बाहर खड़ा था। उसने घड़ी में टाइम देखा, मानो वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही मिनटों में उसके सामने पृथ्वी था। पृथ्वी ने वहां आते ही अभिमन्यु से कहा, जैसा आपने मुझे पता लगाने के लिए कहा था, मैंने उनके शेड्यूल का पता कर लिया है। जल्दी बताओ, मिस सिंघानिया ने अपने घर पहुंचने के बाद क्या कुछ किया? आखिर वो सिंघानिया फैमिली के बीच कर क्या रही थी? अभिमन्यु ने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब सिंघानिया फैमिली के लोग इशिका की इंसल्ट कर रहे थे। पृथ्वी ने जवाब में कहा, सर, वो अपने घर से तैयार होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए गई थी जहां वो पिछली बार हमें मिली थी। वहीं पर उसकी मुलाकात राधिका सिंघानिया और आयशा से हुई थी। अभिमन्यु और पृथ्वी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को यही लगा था कि इशिका अपने घर से इतना तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, लेकिन उनका अंदाज़ा पूरी तरह गलत निकला। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और सिर हिलाकर कहा, क्या तुमने उसे उसकी सैलरी कम बताई थी? उसके पास पैसों की कमी है तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर एडवांस सैलरी ले सकती है। उस तक ये न्यूज़ पहुँचा देना। मैं नहीं चाहता कि वो कहीं भी किसी तरह की छोटी पार्ट टाइम जॉब करे। ऐसा कुछ नहीं है सर, दादी ने उन्हें उस पेट की देखभाल करने का काम सौंपा था, उसकी भी उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। ऊपर से मैंने उसे रोहन के अंडर टीम में शामिल करवाया था, वहाँ भी उसे अच्छी अमाउंट मिल जाएगी। शायद रोहन उसे मुश्किल काम दे रहा है तो उसे डर है कि कहीं हम उसे काम से निकाल ना दे, तभी वो अपनी पुरानी जॉब छोड़ना नहीं चाहती, पृथ्वी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा। अभिमन्यु इशिका को इतने बड़े राजवंश एम्पायर में अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने पृथ्वी को इसकी जिम्मेदारी दी थी कि वो उसके हर मूवमेंट पर ध्यान रखे। पृथ्वी को लगा कि अब उसके बॉस के सवाल जवाब बंद हो जाएंगे क्योंकि इशिका के बारे में उन्हें पता चल चुका है। तभी अचानक अभिमन्यु ने पूछा, और सिंघानिया फैमिली, वो वहाँ उस रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? वो वहां डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के लिए गए थे। शायद यही वजह होगी कि नक्श भी उनके साथ थे, पृथ्वी ने जवाब दिया। और डॉक्टर मर्चेंट कहाँ चले गए? अभिमन्यु ने आगे पूछा। वो वहां आए ही नहीं, पृथ्वी ने धीमी आवाज में कहा। अचानक अभिमन्यु के दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ। उसके चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी स्माइल थी, जो पृथ्वी तो क्या, कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। पृथ्वी अब अभिमन्यु के अगले सवाल का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभिमन्यु कुछ नहीं बोला और उसे वहीं पर छोड़कर अंदर रूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ राधिका ने अब काफी देर तक आराम कर लिया था, अब उसे बेहतर लग रहा था। नक्श भी वहां पर थोड़ी देर तक रुका हुआ था। राधिका ने नक्श और आयशा की तरफ देखा। उसने आयशा से धीमी हल्की खांसती आवाज में कहा, आयशा मैं ठीक हूँ, तुम अब नक्श को घर जाने दो, वो काफी देर से यहाँ है। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि नक्श वहां उसके लिए नहीं बल्कि डॉक्टर मर्चेंट के इंतजार में रुका हुआ था। आयशा कुछ पल रुकी और फिर उसने हिचकिचाते हुए राधिका से कहा, मॉम वो डॉक्टर मर्चेंट। आयशा क्या कहना चाह रही थी राधिका पहले ही समझ गई थी। उसकी बात पूरी होने से पहले वो बोली, मुझे मेरा मोबाइल दो, आज मैं डॉक्टर मर्चेंट से नहीं मिल पाई और उन्होंने मेरा इंतजार किया होगा, मैं उन्हें सॉरी बोल देती हूँ और हमारी मीटिंग रीशेड्यूल कर देती हूँ। राधिका डॉक्टर मर्चेंट को मैसेज करने में लगी थी। इस बीच आयशा नक्श को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। आयशा ने एक नज़र राधिका की तरफ देखा और फिर नक्श को हल्का हक करते हुए बोली, नक्श तुम फिक्र मत करो, हम डॉक्टर मर्चेंट के साथ फिर से मीटिंग कर लेंगे और वो भी बहुत जल्द ही। नक्श ने आयशा से अलग होकर उसकी आंखों में देखकर कहा, आयशा तुम नहीं जानती, न्यू एनर्जी डिपार्टमेंट में फिलहाल काफी टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। मैंने अभी वहां नया ही ज्वाइन किया है और मुझे इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई तो सब मुझसे चलते हैं और मुझे पसंद भी नहीं करते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ नक्श, आयशा ने उसका हाथ सहलाकर कहा। नहीं तुम नहीं समझ रही हो, अगर डॉक्टर मर्चेंट मेरे साथ आए तो मेरा प्रमोशन हो सकता है, सब मेरी इज्जत करने लगेंगे, मैं डॉक्टर मर्चेंट के बलबूते बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। आयशा मुझे कुछ भी करके डॉक्टर मर्चेंट को अपनी टीम में शामिल करना है, नक्श ने अपनी बात पर जोर दिया ताकि आयशा के पास अपने कदम पीछे लेने का कोई रास्ता ना हो। अच्छा ठीक है मैं देख लूंगी, आयशा ने जवाब दिया।
आयशा नक्श को छोड़ने गई थी और वे बातें करते हुए चल रहे थे। इशिका उन पर नजर बनाए हुए थी। जैसे ही वे दोनों लिफ्ट के अंदर गए, इशिका तुरंत रूम में से निकलकर बाहर आई। इशिका आयशा के सामने राधिका से नहीं मिलना चाहती थी। आयशा बेवजह बातों को बढ़ाती और इससे राधिका की तबीयत और खराब हो जाती। यही सोचकर इशिका ने उनके जाने का इंतजार किया। इशिका रूम के अंदर जैसे ही दाखिल हुई और दरवाजा बंद किया, उसके कानों में आदर्श की सख्त आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की, चुपचाप बाहर निकलो यहाँ से। इशिका को लगा राधिका अकेली होगी। आदर्श की आवाज सुनकर उसका चेहरा उतर गया। तभी उसके कानों में राधिका की धीमी और नर्म आवाज सुनाई दी, इशिका मुझसे मिलने आई है, आदर्श उसे बोलो मेरे पास आए। आदर्श राधिका की कोई बात को नहीं टालता था। उसने इशिका से सख्ती से कहा, कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना जिससे राधिका परेशान हो, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इशिका धीमे कदमों से चलकर राधिका के पास गई। राधिका ने कहा, इसमें इशिका की कोई गलती नहीं है, मैंने कहा ना मैं थक गई थी तब बेहोश हो गई। फिर उन्होंने इशिका से कहा, जो भी हुआ उससे तुम डर गई होगी ना, सब लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे थे। इशिका से बातें करते हुए उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया था और बहुत प्यार से सहला रही थी। उनके हाथ छोटे और नर्म थे। इशिका उनके जेस्चर पर हल्का सा मुस्कुराई और ना में सर हिलाकर बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आई, तुम उस घर की बेटी हो, तुम्हें इस तरह सबसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, घर आती रहा करो, राधिका ने मुस्कुराकर कहा। इशिका काफी कम बात करती थी तो वो बस उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। राधिका ने आगे कहा, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारा पति अच्छा आदमी नहीं है, आवारा गर्दी करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर तुमने किसी लड़के को चुना है तो वो अच्छा ही होगा, तुम किसी दिन उसे लेकर घर क्यों नहीं आ जाती, मेरा भी उससे मिलना हो जाएगा। इशिका ने नम आंखों से हाँ में सिर हिलाया। जब से उसने सबको ये बताया था कि उसने शादी कर ली है, हर कोई उसे भला बुरा कह रहा था। राधिका वो पहली इंसान थी जो सच में उसकी परवाह करती थी और उसके पति को अपनी तसल्ली के लिए एक बार देखना चाहती थी। राधिका और भी कुछ कहना चाहती थी पर बीच में ही उसे खांसी आने लगी। आदर्श को तो जैसे इशिका को बाहर निकालने का मौका मिल गया। वो खड़ा होकर इशिका को डांटते हुए बोला, राधिका थक गई है, अब तुम जाओ यहाँ से, इसे आराम की जरूरत है। इशिका भी बेवजह रुककर राधिका को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पॉकेट से एक दवाइयों की बोतल निकाली और राधिका के हाथ में थमाते हुए बोली, ये मैंने किसी खास डॉक्टर से मंगवाई थी, आप एक बार इन्हें लेकर देखिए, आपको आराम मिलेगा। आदर्श राधिका को रोकना चाहता था पर राधिका ने वो दवाई की छोटी सी बोतल इशिका से ले ली थी। इशिका ने उन्हें बाय कहा और फिर वहां से चली गई। इशिका राधिका से मिलने के लिए आई, ये सोचकर ही राधिका को अच्छा महसूस हो रहा था। उसके जाते ही वो आदर्श से बोली, पता नहीं मालविका इसे पसंद क्यों नहीं करती है, जबकि वो इतनी डिसेंट सी बच्ची है, वो आज भी मेरी परवाह करती है। आदर्श याद है बचपन में भी कैसे मेरे बीमार होने पर मेरे पास से हटती ही नहीं थी, तुम बहुत भोली हो राधिका, उसने एक लोकल स्टोर से खरीदकर तुम्हें दवाई क्या पकड़ा दी, तुम पिघल गई।
अगर उसे तुम्हारी इतनी परवाह होती तो वो पिछले 9 सालों में तुमसे मिलने के लिए जरूर आती, आदर्श ने सिर हिलाकर कहा। आदर्श ने राधिका के हाथ से वो दवाई की शीशी ली और उसे वहीं बेपरवाही से साइड में रखते हुए बोला, डॉक्टर अनामिका का नाम सुना होगा तुमने, उनकी बनाई दवाइयाँ कमाल की होती हैं। वो इस वक्त अलग अलग खांसी की दवाइयों की क्लिनिकल रिसर्च कर रही है। जब दवाई अप्रूव हो जाएगी तब मैं तुम्हें उसकी दवाइयाँ लाकर दूंगा जिससे तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। आदर्श की बातें सुनकर राधिका का चेहरा उतर गया। पिछले कई सालों में उसने काफी डॉक्टरों से इस मामले में दवाइयाँ ली थी लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ था। वो उतरे हुए चेहरे के साथ बोली, ये सब तुम मेरे दिल की तसल्ली के लिए बोल रहे हो ना आदर्श, क्रॉनिक न्यूरोजेनिक खांसी की दवाई अब तक नहीं बन पाई है। अगर बनेगी तो वो बहुत ज्यादा महंगी बनने वाली है, इसमें लगने वाली कॉस्ट की भरपाई नहीं होगी तो कोई क्यों इसमें अपना पैसा वेस्ट करेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे, तुम रात भर परेशान रहती हो और सो नहीं पाती तो मुझे बहुत बुरा लगता है, आदर्श ने प्यार से राधिका का हाथ पकड़कर कहा। राधिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। रात को सबके सो जाने के बाद राधिका अपनी खांसी दबाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन सबकी नींद खराब हो। पिछले कई रातों से वो ऐसा ही करती आ रही थी। राधिका ने नम आंखों से अपने मन में कहा, अब खुद पर और कंट्रोल नहीं होता है, मैं सुसाइड नहीं करना चाहती पर बार बार मेरे दिमाग में यही ख्याल आते रहते हैं कि मेरे मरने के बाद शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आदर्श भी मेरी वजह से इतने परेशान रहते हैं, मैं इस बीमार जिंदगी से तंग आ गई हूँ, बस एक बार आयशा की शादी हो जाए। काफी देर तक सोचने के बाद बहुत मुश्किल से उसके दिमाग में उठ रहे नेगेटिव थॉट्स पर उसने काबू पाया और वो खुद को शांत करते हुए बोली, नहीं मैं इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती हूँ। राधिका उठकर बैठी और उसने पानी पिया ताकि उसकी खांसी कम हो सके। पानी पीने के बाद उसकी नजर बेडसाइड पर रखी इशिका की लाई हुई दवाई पर पड़ी। राधिका ने कुछ सोचा और फिर एक टैबलेट को अपने मुंह में रख लिया था। राधिका नहीं जानती थी कि उस दवाई का क्या असर होगा, फिर भी उसने वो ले ली थी ताकि थोड़े समय के लिए ही सही उसे खांसी से थोड़ी राहत मिले। दवाई कमाल दिखाए ना दिखाए इसका पता नहीं, लेकिन राधिका बीमार हो गई तो इशिका का जीना हराम हो जाएगा। प्लीज आप लोग पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।